It's good to remember that God is interested in our lives.
और ये अच्छी बात है याद करना कि परमेश्वर हमारे जीवनों में रुचि रखता है.
And he is at work in us with great interest.
और बहुत ही दिलचस्पी के साथ परमेश्वर हमारे जीवनों में कार्य करता है.
Working in our life to change our life more and more.
और हमारे जीवन में कार्य इसलिए करता है ताकि और ज्यादा हमें बदल सके.
So that's a tremendous encouragement and hope.
और ये बहुत ही बड़ा एक प्रोत्साहन एक आशा हमारे पास है.
But I was thinking something. Unfortunately, we all have sometimes, you know, we get preoccupied with others.
और कई बार मैं ये सोचता हूँ कि कई बार हम औरों के बारे में सोचते हुए बहुत ही व्यस्त हो जाते हैं.
Our focus can be on others easily.
और बहुत ही आसानी से हमारा जो लक्ष्य होता है वो औरों के ऊपर आ जाता है.
And our focus can be on the circumstance, the situation where we are in.
और जहाँ जिस परिस्थिति में हम उस परिस्थिति और हालातों के ऊपर हमारी लक्ष्य आता है.
And easily we can blame others and other situations.
और हम परिस्थितियों और लोगों पर हम उनके ऊपर दोष देते हैं.
And we miss to see ourselves.
और कई बार हम अपने आप को देखना कई बार हम खो बैठते हैं.
Bible says that give close attention to yourselves.
और वचन कहता है कि बहुत ही नजदीकी के साथ हमें अपने आप को देखना है.
I remember once God spoke to me. I have a tendency to always focus on my spotlight on others.
और बहुत बार मेरे जीवन के अंदर ऐसे मेरे स्वभाव था कि औरों के ऊपर हमेशा देखते रहना औरों के जीवनों को.
Easily my attention goes to, you know, the imperfection in others, the inadequacy others. I focus easily, I understand, I can grasp those.
और बहुत ही आसानी के साथ जो लोगों में अंदर कमी रहती थी जो लोगों के अंदर बहुत ही गलतियां हैं उनको आसानी से मैं ढूंढ पाता था.
I remember that time when God spoke to me from 1 Timothy chapter 4. There's a verse which speaks like this. Give close attention to yourself.
और तब परमेश्वर ने पहले तिमोथी में से मुझसे बात किया जहां लिखा हुआ है कि अपने खुद के ऊपर खास ध्यान दे.
So let the focus, the spotlight be on yourself.
और ज्यादा से ज्यादा जो हमारे ऊपर जो प्रकाशित करने वाली बात अगर हो तो हम खुद के ऊपर हम देखें.
When we focus on others, when our spotlight is on others, we will miss God's work in our own life.
जब हम औरों के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं तब हमारे जीवन में परमेश्वर के कार्य को खो बैठते हैं.
So I remember and I am thankful God gave light on that and liberated me from giving attention on others. But give attention to myself.
और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर ने मुझे प्रकाश दिया और उससे मुझे छुड़ाया कि औरों पर ध्यान न देते हुए खुद पर मैं ध्यान दूँ.
And that scripture has also proved, if I give focus on myself, it will save me and it will help to save others as well.
और जैसे वचन कहता है कि अगर मैं अपने आप के ऊपर ध्यान अधिक दूंगा तो मैं अपने आप को भी बचाऊंगा और औरों को भी बचाने में सहायता होगी.
So God is not able to do many new things in our own life because we focus our attention is on others.
परमेश्वर कई बार बहुत सारी नई चीजें हमारे जीवन में नहीं कर पाता क्योंकि हमारा ध्यान औरों पर अधिक लगा हुआ होता है.
So may God help us to turn it back. Let the spotlight be back on ourselves.
और परमेश्वर हमारी मदद करे कि उस ध्यान को औरों की ओर से हटाकर हम खुद पर लगाएं.
It will liberate us, it will set us free, it will take out lot of pressure.
और वो परमेश्वर हमें वो उसे आजाद करेगा और हमारे ऊपर से दबाव को हटा देगा.
In Isaiah chapter 43
और यशायाह 43
verse 19
19 वचन.
Behold, I will do something new. Now it will spring forth. Will you not be aware of it? I will even make a roadway in the wilderness, rivers in the desert.
देखो मैं एक नई बात करता हूँ वह अभी प्रकट होगी. क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा.
So in the recent past weeks, this was coming to my life as an encouragement.
और पिछले सप्ताह में ये वचन मेरे लिए जीवन में एक प्रोत्साहन के रूप में मुझे मिला.
God want to do something new in me.
परमेश्वर मेरे जीवन में कुछ नया करना चाहता है.
एंड am I embracing it, welcome it, receiving, looking for it?
और क्या मैं उसे उसकी बाट देख रहा हूँ? क्या उसको मैं आमंत्रित कर रहा हूँ उस नए काम को?
It's something which we can rejoice over.
और ये ऐसी बात है जिस पर हम आनंद कर सकते हैं.
The interest God has in my life to do something new in my life.
इसे जानकर कि परमेश्वर मेरे जीवन में कुछ नया और करना चाहता है रुचि रखकर.
So I'm greatly encouraged when I see God's desire to do something new in my life more than anyone else.
और मुझे जानकर बहुत ही खुशी और प्रोत्साहन मिला कि परमेश्वर औरों से बढ़कर मेरे जीवन में रुचि रखता है कुछ नया करने में.
And I want to be increasingly focused my attention on myself than on others.
और मैं बढ़ते हुए अपने जीवन के ऊपर ध्यान अधिक लगाना चाहता हूँ औरों पर नहीं.
I want to be thankful for everyone, but my attention I want to focus in myself.
और मैं सबों के लिए धन्यवाद जरूर देना चाहता हूँ, लेकिन मेरा ध्यान जो है खुद के ऊपर लगा हो मैं लगाना चाहता हूँ.
And this word says that I will even make a roadway in the wilderness.
और वहाँ लिखा है मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा.
When we see things of impossibilities.
और जब हम देखते हैं असंभव हालात हैं,
we can say that our circumstances are not at all favorable.
जब हमारी परिस्थिति हमारा साथ नहीं देती है,
it's a wilderness.
वो एक जंगल की तरह है.
But God can make a roadway, opportunities there.
लेकिन परमेश्वर वहाँ पे मार्ग बना सकता है, एक मौके ला सकता
है. And God can create a river there in the desert.
और वहाँ लिखा है निर्जल देश में वो नदियाँ बहा सकता
है. We think only impossibility, we see only negative things, but God can create a river there.
और हम असंभव हालातों को, नकारात्मक बातों को देखते हैं, लेकिन परमेश्वर वहाँ नदी बहा सकता है.
God can do something new.
परमेश्वर कुछ नया कर सकता है.
We read in Ezekiel chapter 36.
और Ezekiel का 36 अध्याय में हम पढ़ते हैं.
26 and 27. Ezekiel 36:26-27. Moreover, I will give you a new heart and put a new spirit within you, and I will remove the heart of stone from your flesh and give you a heart of flesh.
मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा. तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा.
This word was really speaking to me, the promise of God that he is willing to give me a brand new heart.
और ये वचन ने सच में मुझे प्रोत्साहन दिया कि परमेश्वर की इच्छा है कि वो मुझे एक नया हृदय दे.
Are we interested?
और क्या हम उसमें दिलचस्प हैं?
Jesus is not offering to repair our heart. He is offering to give me a new heart.
और परमेश्वर यहाँ पर हमारे जो हृदय है उसको मरम्मत नहीं करना चाहता, लेकिन एक नया हृदय देना चाहता
है. Is it not a wonderful thing?
और क्या ये अद्भुत बात नहीं है?
It's not a Christian life is after all not a struggle with our own strength, but Jesus offering to give us a new heart.
और मसीह जीवन हमारे प्रयत्नों के द्वारा संघर्ष नहीं, लेकिन वो हमें एक नया हृदय देना चाहता है.
We often see this example of a lamb and a pig.
और हमेशा हम इस उदाहरण को देखते हैं, एक भेड़ को और पशु को.
It's not that Jesus will repair the pig's heart or clean the pig's organ, but he can give us like the heart of a lamb.
और परमेश्वर ऐसा नहीं कि वो जो सुअर है उसके हृदय को मरम्मत करे, लेकिन एक भेड़ के समान एक हृदय परमेश्वर में देता है.
And not only that, he can give his Holy Spirit upon us.
और उतना ही नहीं, लेकिन वो अपना पवित्र आत्मा हमारे जीवन के ऊपर देता है.
More than anything, I like it is he will remove a heart of stone from your flesh and give you a heart of flesh.
और उससे बढ़कर जो है वो कहते हैं पत्थर का हृदय निकालकर मांस का हृदय देगा.
Are we interested? Do we think that we have a heart of a stone?
और क्या हम इसमें रुचि रखते कि हम सोचते कि हमारा हृदय एक पत्थर के समान है?
If we see that in ourselves a heart of stone, Jesus is willing to give us a new heart, a heart of flesh.
अगर हम देख सकते कि हमारा हृदय पत्थर के समान है, तो परमेश्वर की इच्छा है कि वो हमें मांस का हृदय दे.
A heart which is sensitive.
और एक ऐसा हृदय जो संवेदनशील होता है.
A heart which is sensitive to the Holy Spirit.
और ऐसा हृदय जो पवित्र आत्मा के प्रति संवेदनशील होता
heart
है.
Which is sensitive to others.
और ऐसा हृदय जो औरों के प्रति संवेदनशील होता है.
Stony heart, heart has no feeling, no emotion, nothing, but the stony heart can be taken away. Jesus can give us a new heart of flesh.
और ऐसा पत्थर का हृदय जिसमें कोई भावना नहीं, किसमें अच्छी चीजें नहीं, ऐसा हृदय परमेश्वर निकालना चाहता है.
It's an extremely wonderful, welcoming, encouraging promise of God.
और ये बहुत ही अद्भुत और प्रोत्साहित देने वाला प्रभु का वायदा है.
And not only that, verse 27 says that I will put my spirit upon you and cause you to walk in my statutes.
और उतना नहीं, 27 वचन में लिखा है मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे.
And you will be careful to observe my ordinances.
और मेरे नियमों को मानकर उसके अनुसार चलोगे.
You know, someday we have seen in our own, you know, somebody even talk about that. You know, we struggle to keep God commandments. We struggle to figure out how to please God.
और कई बार हमारे जीवन में हम प्रभु की आज्ञाओं का पालन करने के लिए, उसे प्रसन्न करने के लिए हमेशा संघर्ष करते हुए देखते हैं.
But here God is saying that I will put my spirit right within you.
लेकिन वचन कहता है कि मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर दूंगा.
And not only that, I will make you to walk in my statutes.
और उतना ही नहीं, लेकिन मेरी विधियों पर तुम्हें चलाऊंगा.
The Holy Spirit abiding in us will make us to walk in God's ways.
और पवित्र आत्मा हमारे भीतर रहकर परमेश्वर के मार्ग पर हमें चलाएगा.
Instead of doing all this in our own strength or ability or willpower.
और अपनी इच्छा या अपने सामर्थ्य के बलबूते पर करने के बजाय
Holy Spirit accomplishing that work within us.
वो पवित्र आत्मा का कार्य हमारे जीवन में पूरा करता है.
No, I have seen believers someday. No, I don't have no willpower like this brother, so I can't.
और कई बार हम ऐसे विश्वासी को बोलते सुनते कि इस भाई के समान मेरे पास वो इच्छा शक्ति नहीं है.
It's nothing to do with our willpower.
और वो इच्छा है और उस इच्छा शक्ति के साथ उसका लेना देना नहीं है.
Allowing the Holy Spirit to abide in us and making us to walk. And allowing him to make us to walk in his ways.
हमें पवित्र आत्मा को अनुमति देना है कि हमें हमारे भीतर आकर उसके मार्गों में हमें चलाए.
It's a wonderful, glorious way.
ये बहुत ही अद्भुत और एक महिमामय तरीका है.
To which God wants to open our eyes of understanding.
ताकि परमेश्वर हमारी उस समझ की आंखों खोलना चाहता है.
Hebrews chapter 8.
इब्रानियों 8 अध्याय.
10 to 12.
10 से 12.
For this is the covenant that I will make with the house of Israel. After those days, says the Lord, I will put my laws into their minds, and I will write them on their hearts, and I will be their father, and they shall be my people.
फिर प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इस्राएल के घराने के साथ बांधूंगा वह यह है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा उसे उन्हें उनके हृदयों पर लिखूंगा और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग ठहरेंगे.
इट्स अगेन जीसस डूइंग समथिंग न्यू विदिन अस.
और ये कुछ ऐसा है कि जो यीशु मसीह कुछ नया हमारे भीतर करता है.
गॉड डूइंग पुटिंग हिज लॉज इनटू आवर माइंड्स.
और परमेश्वर अपनी व्यवस्था को हमारे मन में रखता है.
एंड इवन राइटिंग देम राइट इन आवर हार्ट्स.
और हमारे हृदयों पर वो विधियों को लिखता है.
एंड गिविंग दिस एश्योरेंस दैट आई विल बी देयर गॉड एंड दे शैल बी माय पीपल.
और ये विश्वास वहां देता है कि मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे लोग ठहरोगे.
एंड इट्स अ वंडरफुल थिंग होली स्पिरिट हिमसेल्फ राइटिंग हिज थिंग इन आवर हार्ट.
और ये बहुत ही अद्भुत बात है कि पवित्र आत्मा वो परमेश्वर की बातें हमारे हृदयों पर लिखता है.
That each one of us can receive such a walk, such a life.
ताकि हर एक वो जीवन को प्राप्त कर सके उस मार्ग में चल सके.
And verse 11 says that they shall not teach everyone his fellow citizen and everyone his brother, saying, Know the Lord, for all will know me. And from the least to the greatest of them.
और हर एक अपने देश वाले को अपने भाई को यह शिक्षा न देगा कि तू प्रभु को पहचान क्योंकि छोटे से बड़े तक सब मुझे जान लेंगे.
So everyone of us can know the Lord.
हर एक व्यक्ति परमेश्वर को जान पाएगा.
And I remember how I knew the Lord.
और मुझे याद आता है मैंने कैसे परमेश्वर को जाना.
God can use people, but each one of us should know God personally.
परमेश्वर हर एक का इस्तेमाल कर सकता है लेकिन हमको व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर को जानना है.
In my case, one of my classmates told me about Jesus, and that was the time when I was seeking for something.
और उस समय एक मेरे जीवन के अंदर मुझे स्मरण आता है कि मेरे क्लासरूम में मेट जो था उसने प्रभु के बारे में मुझे बताया जब मैं को ढूंढ रहा था.
And that happened when God prepared my heart. I saw my own vacuum and emptiness. I was seeking for truth and reality in my life.
और परमेश्वर तब मेरे जीवन के अंदर की जो वास्तविकता है जो खालीपन है उसको वो दिखा रहा था.
And Holy Spirit prepared my heart to receive Jesus as my savior and master.
और पवित्र आत्मा ने मेरे हृदय को तैयार किया था कि यीशु मसीह को उद्धारकर्ता और स्वामी के रूप में मैं ग्रहण कर सकूं.
It's not through my parents.
और ये मेरे माता पिता के द्वारा नहीं हुआ.
But every one of us need to know Jesus.
लेकिन हमें से हर एक को यीशु मसीह को जानने की जरूरत है.
And most wonderful thing is in verse 12, I will be merciful to their iniquities, and this is something amazing. I will remember their sins no more.
और 12 वचन में कुछ अद्भुत बात लिखी है कि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत होऊंगा और उनके पापों को फिर स्मरण न करूंगा.
This some extremely comforting thing.
ये बहुत ही प्रोत्साहन देने वाली बात है.
Think about it, they are on the last day of this year.
और सोच के देखिए हम इस साल के अंतिम दिन में हैं.
Today, suppose Holy Spirit telling us whatever you have done in the past.
अगर पवित्र आत्मा आपसे कहता है कि पिछले तुम्हारे भूतकाल में साल में कुछ भी आपने किया हो, अगर आप इच्छा रखते हैं कि अपने पापों को मान ले प्रायश्चित करें.
And I am willing more than happy to forgive your sins.
और ये पवित्र आत्मा की ये बहुत ही इच्छा है कि वो हमें माफ हमारे अपराधों को माफ करे.
I will cleanse you from all unrighteousness without exemption.
और किसी भी बातों के बिना वो कहता है कि मैं तुम्हारे अपराधों को माफ करूंगा.
And I want to be your merciful father.
और वो कहता है मैं एक दयावंत पिता रहना चाहता हूँ आपके प्रति.
Throw your sins to the deepest of the sea.
और वो समुद्र की गहराई में उन पापों को मैं डाल दूंगा.
And he says that I will remember them no more.
और फिर वो कहता है तुम्हारे पापों को मैं स्मरण नहीं करूंगा.
Think about it, how are we human beings?
और कैसे हम सोच के देखें अपने बारे में?
Even after someone asks forgiveness, we tend to remember those things, right?
और कई बार किसी ने अगर माफी भी मांगी हो, फिर भी हम उन बातों को याद करते हैं.
Some of us even remember things, some bad thing which others have done to us many, many years.
और कुछ सालों पहले किसी ने कुछ बुरा किया, वो भी हम याद रखते हैं.
I remember one brother was on sharing the US expressing this this reality.
और एक भाई इस प्रकार बता रहे थे जो एक बार उनके साथ घटना हुई थी.
इट इज वेरी हार्ड फॉर मी टू मेमोराइज वन सिंगल बाइबल वर्स.
और एक घटना, एक प्रभु का वचन याद करने के लिए मुझे बहुत तकलीफ होती है.
बट आई इजीली रिमेंबर सम बैड थिंग, सम मिसबिहेवियर अदर्स हैड डेल्ट इन सम 20 इयर्स बिफोर.
लेकिन बड़ी आसानी से 20 साल पहले अगर किसी ने कुछ बुरा किया, वो याद करने में बड़ी आसानी रहती है.
दैट इज हाउ वी आर, वी ह्यूमन बीइंग्स आर इजी, वी कैन remember the bad thing other than many, many years, but we can't remember one single verse.
और इस प्रकार हमारा मानवीय स्वभाव है, 20 साल पहले किसी ने बुरा किया, वो हम याद रखते हैं, लेकिन एक वचन तक हम स्मरण नहीं कर पाते.
But God wants to change our lives.
पर लेकिन परमेश्वर हमारे जीवनों को बदलना चाहता है.
And even the bad thing which others have done to us, we may remember, but without any bitterness or unforgiveness.
हम अगर किसी ने बुरा किया उसे याद कर सकते हैं, लेकिन कोई भी कड़वाहट या माफी न देने वाली उस भावना से रखें.
We can bring them to our remembrance if required, not with a negative, with a poison or a sting. Poisonous.
और किसी भी जहर या उस प्रकार की भावना से उसको न रखें.
So that is what Jesus is saying. I will remember them no more. I am not bringing it to my memory. I can remember if I want. But all the bad things, all the sins they committed, I will remember no more.
और परमेश्वर कहता है कि जो भी सारे पाप अपने अपने जीवन में अब तक किए होंगे, मैं उसको किसी को भी मैं स्मरण नहीं करूंगा.
So is it not a comforting thing?
और क्या ये प्रोत्साहन देने वाली बात नहीं है?
I've seen people living a life nagging about their past life.
और मैंने ऐसे लोगों को देखा है, वो हमेशा अपने जीवनों के बारे में चिड़चिड़ा, उन चीजों को, भूतकाल को याद करके हमेशा चिड़चिड़ाते हैं.
Sometimes I've seen my own life. Sometimes that nagging feeling is so unbearable.
और इस प्रकार को वो भूतकाल को याद करने की जो बात है, वो मेरे लिए मैं सहन नहीं पाता कई बार.
This happens especially to very honest people. That nagging thought of their past sins and everything can be so unbearable.
और कई बार हम देखते हैं कि प्रामाणिक लोग जो होते हैं, उस प्रकार की भूतकाल की बातें वो सही नहीं होती याद करना.
But Jesus is giving us his promise. He is willing to forget. He is willing to cleanse. And he is promised that I will remember no more.
यीशु ने वायदा दिया है कि वो हमें माफ करेगा, हमारे अपराधों को पूरी तरह से साफ करेगा, और कहता है कि मैं उसे बिल्कुल भी स्मरण नहीं करूंगा.
So today I want to encourage dear brothers and sisters. God wants to set us free from our bad conscience.
और मैं भाई और बहन आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ, परमेश्वर हमारे बुरा जो विवेक है उसे आजाद करना चाहता है.
Live under the bondage of the past, what a committed negative sins and everything, the crimes and trespasses we have done, and live in that nagging bad conscience. That is not God's plan for us.
और हमारे भूतकाल में जो भी पाप या नकारात्मक बातें हैं, जो बंधन रहे हैं, उसमें से हम छूटकर हम बाहर निकले, जो भी नकारात्मक भूतकाल रहा हो.
Jesus can give today a clear conscience, like a newborn baby. A baby no, he's born today. Nothing to remember about yesterday, isn't it?
और यीशु मसीह आज एक हमें एक नया हृदय, एक नया हमें बना सकता है, जैसे एक नया जन्मा हुआ बच्चा होता है, उसको कुछ भी याद नहीं रहता है.
So Jesus can remember, give us such a good conscience, a conscience clear of all the nagging thoughts of the past.
और यीशु मसीह हमें एक नया विवेक, एक शुद्ध विवेक देना चाहता है, जो भूतकाल के सारे पापों और बातों से आजाद हो.
Are we willing to accept it?
और क्या हम उसको इच्छा रखते हैं उसे पाने की?
So I was thinking another thing. Is there anyone whom I find it difficult to forgive?
और क्या ऐसा कोई है जिसको मैं माफ करने के लिए मुझे मुश्किल होता है?
So I was searching myself now this season.
और
is there anyone in the world who have done something to me? Is there any difficulty in releasing that person, forgiving that person?
और मैं अपने आप को इस दिनों में जांच रहा था कि ऐसा दुनिया में कोई भी व्यक्ति जिसने कुछ बुरा किया और मैं उसको माफ नहीं कर पा रहा हूँ.
God wants us to stand before Him today. All of us, every one of us, with such a good conscience that we can say, even after a search of ourselves, we can boldly say that I am happy to forgive everyone. There is no single person upon the sky.
और हम अपने आप को जांच कर इस प्रकार का विवेक परमेश्वर के सामने खड़े रखे कि ऐसा कोई भी संसार के अंदर व्यक्ति नहीं है जिसको हम माफ नहीं कर पा रहे हो.
When God has given us so much forgiveness, release us so much, it should be easy for us to forgive the failures of others.
जब परमेश्वर ने हमारे इतने अधिक अपराधों को माफ किए, हमारे लिए आसान होना चाहिए और लोगों के अपराधों को माफ करना.
However hard it seems to be into us
aur kitna bhi kathin wo hame dikhta ho
are we willing to do that right now is there anybody you know when you think even as I speak as we come somebody holy is reminding about somebody no we find it hard to release that brother sister someone even not here somewhere in another continent
aur jaise hum is prakar
ki that person right now
aur abhi is prakar jab hum baat kare abhi wo samay shayad pavitra atma aapko dikhata hoga koi vyakti hoga shayad yahan nahi hoga jisko aap maaf nahi kar pa rahe aap uski pavitra atma ke dwara usko maaf kar sakte hain
in psalm 51 david is praying a prayer
aur bhajan sita 51 ke andar daud is prakar se prarthna karta hai
psalm 51 verse 10
और 51:10 के अंदर
द प्रेयर गोस लाइक दिस क्रिएट इन मी अ न्यू क्लीन हार्ट ओ लॉर्ड फिल्ड विद अ क्लीन थॉट्स एंड राइट डिजायर्स
प्रभु मुझ में शुद्ध और एक नया मन उत्पन्न कर एक नई इच्छाओं के साथ
क्रिएट इन मी अ न्यू क्लीन हार्ट ओ गॉड
वो कहता है कि परमेश्वर तू मुझ में एक नया शुद्ध हृदय उत्पन्न कर
सो दैट शुड बी आवर प्रेयर इफ वी प्रे गॉड विल गिव दैट टू अस
और ये हमारी प्रार्थना होनी चाहिए अगर हम ऐसे प्रार्थना करेंगे परमेश्वर देगा
ए हार्ट फ्री ऑफ अनफॉरगिवनेस
ऐसा हृदय जो बिना माफी न देने वाली आत्मा से आजाद हो
ए हार्ट फ्री ऑफ बिटरनेस अगेंस्ट अदर्स
ऐसा हृदय परमेश्वर देगा जिसमें कोई कड़वाहट ना हो
ए हार्ट फ्री ऑफ अनलविंग एटीट्यूड्स
और ऐसा हृदय जिसमें बिना न प्रेम करने वाला आत्मा होगा
ए हार्ट फ्री ऑफ unclean thoughts
aur aisa hriday jo bure vicharon se azad hoga
so you should pray that prayer lord create in me a new clean heart
aur main is prakar prarthna prabhu mere jeevan ke andar ek naya shuddh hriday utpann kar
filled with clean thoughts
aur acche shuddh vicharon se bhara hua
and filled with right desires
aur ek achhi ichcha ek sahi ichchao ke sath kar
de filled with right attitudes
ek achha swabhav hone de
there's a wonderful passage at Isaiah chapter 58
aur यशाया 58 अध्याय के अंदर एक वचन है
Isaiah 58 11 and 12 this is where god wants each one of us this is something which challenged many times I really desire and covet for such a life in my own life
और ये बहुत ही चुनौतीदायक वचन मैं चाहता हूं मेरे जीवन के अंदर ये वचन को पूरा होने के लिए
Isaiah chapter 58 verse 11 and 12
58 यशाया 11 और 12
वचन again a promise of god something which god is seeking to do in my life in our lives
और ये परमेश्वर का वायदा है परमेश्वर इच्छा रखता है कि ये वचन ये वायदा हमारे जीवन में पूरा करे
the lord will continually guide you
यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा
think about the desire of god to continually without any break guide each one of that is the desire of the lord
और ये कितनी अद्भुत बात है परमेश्वर हमें लगातार बिना किसी रुकावट के वो हमें निरंतर लेकर चलना चाहता है
and to satisfy your desire in scorched places
और अकाल के समय तुझे तृप्त करे
in a situation of like a wilderness scorched place where the Jesus can only satisfy our desires.
और अकाल या जंगल की जो समान परिस्थिति उसमें परमेश्वर हमें तृप्त कर सकता है
And he will strengthen your bones.
और वो तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा
And you will be like a watered garden and like a spring of water whose waters do not fail.
और तू सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता
And I read and cherished it to be like a watered garden.
और इस वचन को पढ़कर मुझे बहुत अच्छा हो कि ऐसी बारी जो परमेश्वर के द्वारा सींची जाती है
God wants to make our lives like a watered garden.
और परमेश्वर हमारे जीवनों को एक ऐसी बारी जो सींची उसके समान बनाना चाहता
है Always offering something refreshing comfort to others
aur aisa jo kuch protsahit aur aaramdayak jo hum kisi aur ko de sakte
ho always ready full of fruits and flowers
aur hamesha hum taiyar rehte hain phalon ke sath phool ke sath
to cater to the needs of others
taki auron ki zaruraton ko pura kar sake
to encourage and refresh others
auron ko hum taazgi de sake protsahit kar sake
a watered garden will be not a parched dry unattended garden god wants us our lives to be like a watered garden
aur ye ek bahut hi acha ek jeevan jiyo sinchi hui bari ke saman ek sukha hua ya aisa akal ke saman nahi
it speaks about fulfillment
aur ye ek bharpuri ko batata hai
our each one of those lives god wants to transform and change such that it bless others
aur parmeshwar is prakar hamare jeevanon ko parivartit karna chahta hai taki wo jeevan auron ko aashish de
instead of seeking we will be able to refresh others
hum khojte rahe mangte rahe usse zyada hum auron ko taazgi dene wale banenge
we will be able to touch others life bless others lives
hum auron ke jeevan ko sparsh karne wale unko aashish dene wale honge
that is the god's desire for each one of us
aur parmeshwar ki ichcha hum sabo ke liye ye hai
are we willing to cooperate
aur kya hum uske sath sahyog dete hain
or our desire is always seeking and is there a willingness to be to bless others
kya hamare andar aisi ichcha hai ki hum auron ko aashish de
and he says that and like a water and a spring of water whose waters do not fail
और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी सूखता नहीं.
लाइक ए स्ट्रीम ऑफ वाटर इन अ डेजर्ट, इट नेवर फेल्स. थिंक अबाउट इट, एनिमल्स एंड पीपल विल बी लुकिंग, सर्चिंग, सीकिंग टू बी देयर.
और सोच के देखिए, जंगल में ऐसा सोता हो जहां कभी सूखता नहीं, और जो आदमी होंगे, पशु होंगे, ऐसे सोते के पास वो उसको खोजते होंगे और उसके पास आएंगे.
आवर लाइव्स, आवर प्रेजेंस कैन बी सच ए रिफ्रेशिंग थिंग टू अस. दैट इज व्हाट वी शुड डिजायर, एंड दैट इज व्हाट गॉड वांट टू अकॉम्प्लिश इन आवर लाइव्स.
और हमारा जीवन इस प्रकार एक आरामदायक और किसी को प्रोत्साहन देने वाला, किसी को ताजगी देने वाला परमेश्वर बनाना चाहता है.
नॉट ओनली दैट, थिंक अबाउट वर्स 12, फ्रॉम दोस फ्रॉम अमंग यू विल रीबिल्ड एंशिएंट रुइंस.
और 12 वचन में लिखा है, तेरे वंश के लोग बहुत काल से उजड़े हुए स्थानों को फिर से बसाएंगे.
यू कैन सी, यू कैन हैव अ स्पिरिचुअल सम रुइंस अराउंड अस.
और कई बार हम देखते हैं हमारे आसपास में आत्मिक उजड़ा हुआपन देख पाते हैं.
यू कैन सी सम रुइंस इन आवर ओन लाइफ.
और हमारे जीवन के अंदर भी ऐसा उजड़ापन देख पाते हैं.
Probably we can see some ruins in our families.
हमारे परिवारों में ऐसा उजड़ी हुए स्थानों को देखेंगे हम शायद.
In our some of the closed relatives.
और शायद हमारे पास के जो रिश्तेदार, उनके जीवन में ऐसे उजड़े स्थान हम शायद देखेंगे.
God is promising that I will use some of you to rebuild some ancient ruins.
और परमेश्वर यहाँ पर बता रहा है कि तू ऐसे बहुत वंश काल के जो उजड़े स्थानों को फिर से बसाएगा.
Think about it. God can use us even to correct, repair, rectify some of things happened in the past.
और सोच के देखिए, परमेश्वर हमारा इस्तेमाल करना चाहता है ताकि जो भूतकाल में बातें हुई उसकी मरम्मत कर सके हमारे द्वारा.
Some of things happened by fathers, grandfather, you know. God wants to select some of us to rebuild those.
और शायद हमारे दादा परदादा के द्वारा कुछ हुआ होगा, परमेश्वर हमारा चुनाव करना चाहता था कि हम उन स्थानों को फिर से बसाए.
And you will raise up the age-old foundations.
और वहाँ लिखा है कि पीढ़ी-पीढ़ी की पड़ी हुई नींव कर घर उठाएगा.
And this is something which I liked more than anything.
और ये मुझे बहुत पसंद है.
You will be called the repairer of the breach.
और यहाँ लिखा है, तेरा नाम टूटे हुए बाड़े का सुधारक होगा.
So are we willing to be a repairer of the breach, or you want to be a divider?
और क्या इस वचन के आधार पे हम बाड़े का सुधारक बनना चाहते हैं, उसको विभाजन करने वाले बनना चाहते हैं?
Are we willing to accept that call, challenge of God, that to make you a repairer?
और क्या हम तैयार हैं परमेश्वर की इस चुनौती, जो बाड़े का सुधारक बनने की, उसे प्राप्त करने
When
के लिए?
When we see problems and conflicts, God wants to make each one of us to be a repairer.
और जब हमारे आसपास जो संघर्ष को देखते हैं, अनेक चीजों को देखते हैं, परमेश्वर चाहता है कि हम वहां पे सुधारक या मरम्मत करने वाले बन सके.
Some people don't write, think it's a very low, 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 low job. I don't want it. Being a repair is not a very promising thing.
और ये सुधारक या ये मरम्मत करने वाली जो ये जो काम है, जो बहुत नीचे कक्षा का काम है, काफी लोगों को पसंद नहीं आता.
To be a repairer is one of the glorious thing what we can do.
और मरम्मत करने या सुधारना एक बहुत ही महिमामय चीज है.
To be a repairer of relationship, to be a repairer when lot of conflicts and fight and struggles are going on.
और संघर्ष जो आसपास हमारे देखते हैं, रिश्तों के अंदर देखते, उसको सुधारक बनना अच्छी बात है.
And even a restorer of the streets. Which to dwell.
और पथों का ठीक करने वाला.
You think the situations are not good, my home, I can't. But you, God wants you to change, restore the situation there.
आपको लगता होगा कि आपके परिवार में चीजें ठीक नहीं है, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है वहाँ पे एक बदलाव लाने के लिए.
Are we willing to shoulder the responsibility? Challenge which God wants to offer to us.
क्या हम परमेश्वर जो चुनौती देता है उस जिम्मेदारी को लेने के लिए तैयार है?
To be a repairer and to be a restorer.
ताकि हम एक सुधारक बन सके और पुनर्स्थापित करने वाले बन सके.
Our tendency is to let someone else do this.
और हमारा ये स्वभाव होता है कि कोई और करे.
But God wants us to be involved.
लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम उसमें शामिल हो.
God wants us to take the responsibility.
परमेश्वर चाहता है कि हम उस जिम्मेदारी को ले.
To be a repairer, to be a restorer.
उस सुधारक को हम बन सके, मरम्मत करने वाले बने.
It's a wonderful, glorious thing.
ये बहुत ही अद्भुत और एक महिमामय बात है.
May God really help us to open the eyes of our understanding.
परमेश्वर सच में हमारी समझ की आंखों को खोले.
And receive the call of God in our life.
और परमेश्वर की जो बुलाहट हमारे जीवन पर, उसको हम ग्रहण करें.
Each one of understanding what God expects from us.
ताकि हम में से हर एक समझ सके कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है.
So that we can say, speak Lord, your servant is listening.
ताकि हम कह सके, प्रभु तू बोल, तेरा दास सुनता है.
Trying to understand what God is trying to speak to us.
और परमेश्वर हमसे जो बातें करना चाहते हैं, उसे हम समझ सके.
See, when we are, as I mentioned, focusing on others, it is very hard to God to make teach us something.
और जब हम औरों के ऊपर ज्यादा ध्यान रखते हैं, तो परमेश्वर हमें कुछ सिखाने में फिर उसको बहुत कठिनाई होती
है. Sometimes God is telling me, I am really struggling to speak to you something, but your attention is not on others.
कई बार मैं इस प्रकार देखता हूँ, परमेश्वर मुझसे इस प्रकार कहते हुए कि मैं कई बार संघर्ष मैं करता हूँ तेरे से बात करने की, क्योंकि तेरा ध्यान किसी और के ऊपर है.
I want to speak to you.
परमेश्वर कहते हैं, मैं तुझसे बात करना चाहता
हूँ. Are you willing to give me attention.
Kya tu apna dhyan mujhe dega?
You're so much after others. Your attention is so much other. You're how much are imperfect and negative thing of failures of others.
Aur tera dhyan hamesha logo ke nakaratmak, logo ki asafalta hai, logo ki har ek baaton ke upar dhyan tera rehta hai.
And we can be so much preoccupied with others.
Aur tu usi ke saath hamesha vyast rehta hai.
Can be our wives, children, church members.
हमारे पत्नी बच्चे हो सकते हैं या कलीसिया के लोग हो सकते हैं
बट समथिंग व्हिच जीसस ट्राइंग टू स्पीक टू आवर्स वी मिस इट
और उसके साथ फिर कई बार जो यीशु मसीह हमसे कहना चाहता है वो हम खो बैठते हैं
आई सी वी कैन सी पीपल आर सो मच फेड अप अबाउट अदर्स
ऐसे लोगों को देखा है कि जो औरों से बहुत थक चुके हैं
एंड व्हेन वी आर फेड अप विद आवरसेल्व्स That is the time God will do something new in us.
और जब हम अपने आप से थक जाते हैं तब वो समय होता है जब परमेश्वर कुछ कार्य हमारे जीवन में करेगा.
It is such a tiring life. We live, we can be a life, leading a life which is fed up with others, fed up with the church, fed up with the wife, family, everything. We are fed up with others. But we don't see ourselves. We are not fed up with ourselves.
और कई बार हम औरों से कलीसिया से परिवार या और लोगों से इतने थक जाते हैं लेकिन हम अपने आप से नहीं थकते हैं.
It is when we are fed up with ourselves that is the time God will do something new in us.
और ऐसा समय जब हम अपने आप से थक जाएंगे तभी वो समय होगा जब परमेश्वर कुछ कार्य हमारे जीवन में कर पाएगा.
I see people leaving church because they are fed up with some the people in the old church. They are looking for something new.
और कई बार ऐसे लोग हैं जो और अपनी कलीसिया को छोड़ देते हैं ताकि अपनी कलीसिया में और लोगों के साथ वो थक चुके होते हैं
They'll go to new church, they'll be fed up there also.
और जब नई कलीसिया में वहां पर भी वो लोगों से थक जाएंगे
But are we fed up with ourselves? Are we seeing our own need?
और क्या हम अपनी जरूरत को देख पाते हैं कि हम अपने आप से थक चुके हैं
आर वी एबल टू लिसन व्हाट गॉड इज ट्राइंग टू स्पीक टू अस
और क्या हम सुन पा रहे जो परमेश्वर हमसे बात करना चाहता है
Just want to conclude reading a verse in Philippians chapter 1.
और फिलिपियों एक अध्याय के अंदर
वचन पढ़ेंगे. Something very encouraging.
प्रोत्साहन दायक वचन है.
Philippians chapter 1:6.
एक अध्याय 6 वचन.
For I am confident of this very thing that he who has begun this good work in you will perfect it until the day of Christ Jesus.
और मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा.
And this is something amazing. The work which Jesus started in you, here is a promise that Paul is, I am confident that this very thing that the work which Jesus began in you, he will perfect it.
और पॉल को इस बात का भरोसा है कि जो अच्छा काम यीशु ने आरंभ किया उसे वो जरूर पूरा करेगा.
And also verse Philippians chapter 2:13.
और 2:13 फिलिप्पी 2:13.
It is God who is at work in you, both to will and to do His good work for His good pleasure.
क्योंकि परमेश्वरी है जिसने अपनी स्वेच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बात करने का प्रभाव डाला है.
In our office, when we do, when you do and create various documents, we give it a name like work in progress.
और कई बार ऑफिस के अंदर जब हम कार्य करते हैं और कुछ काम सबमिट करते हैं वहां पे लिखता है कि वर्क इन प्रोग्रेस काम चल रहा है अभी
सो नोबडी शुड टेक इट एज अ फाइनल एवरीवन शुड नो इट इज वर्क इज गोइंग ऑन इन इट इट इज नॉट कंप्लीट डॉक्यूमेंट
उसको देखकर उस डॉक्यूमेंट को देखकर ये नहीं चलेगा ये पता नहीं चलेगा कि ये काम हो चुका है लेकिन ये काम इसके ऊपर अभी भी चल रहा है
सो लाइक दैट इज गुड टू सी आवरसेल्व्स एज Positively work in progress.
इसलिए अच्छी बात है कि हम अपने आप को सकारात्मक रूप से देखें कि अभी भी कार्य मुझ पर चल रहा है.
God's work is in progress within our life.
और परमेश्वर का कार्य हमारे जीवन के अंदर अभी भी चल जारी है.
And with all my heart, I am cooperating in the work of the Holy Spirit.
और पूरे अपने हृदय के साथ पवित्र आत्मा का कार्य जो मुझ में उसके साथ में सहयोग देता हूँ.
To complete that work He has started in my life.
और जो कार्य जो उसने आरंभ किया उसे वो अंत कर सके.
May God bless us.
प्रभु हमें आशीष दे.
I thank God that God has given us a word of hope.
और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ जो आशा का वचन उसने हमें दिया.
Something which was coming to my mind, I heard the message which Sam brother had shared in Kandivali recently.
और अभी पिछले दिनों के अंदर भाई सैम ने कांदिवली फेलोशिप में ये वचन सुना था बताया था.
And in that he mentioned something like when we come to the end of the year or we have to compare ourselves with what spiritual progress we had made in the last year compared to the last year
aur unhone bataya tha ki jab hum saal ke ant bhag mein aate hain tabhi hum apne aap ko tulna karna hai pichle saal ke baad ki mera aatmik vikas kitna hua hai ya nahi hua hai
so some indications he gave that really touched my heart
kuch chinna unhone dikhaya bataya jo sach mein mere hriday ko jisne chua
one thing he said is how much sensitive I have become to the voice of the Holy Spirit
पहली चीज जो उन्होंने बताया कि कितना संवेदनशील मैं पवित्र आत्मा की आवाज के प्रति बना हूँ
सेकेंड इज हैव आई begun to hate sin more than I used to hate it last year.
Sin. और पिछले साल के तुलना के अंदर इस साल क्या मैं पाप से और अधिक ज़्यादा नफरत कर पा रहा हूँ?
Am I more sensitive to? Am I more encouraging or more appreciative of what others do?
और क्या मैं और जो लोग करते हैं उसमें ज़्यादा मैं उनको सराहना करता हूँ या प्रोत्साहन देता हूँ?
Am I able to, for example, am I able to forgive people more easily than I used to do it last year?
जिसे गए साल पिछले साल मैं करता था, इस साल क्या मैं लोगों को आसानी से माफ़ कर पाता हूँ?
Am I able to ask forgiveness more easily than I used to do it in the last year?
और पिछले साल की तुलना में क्या मैं बहुत आसानी से माफ़ी मांग सकता हूँ किसी के साथ?
So these are things he said that we need to examine ourselves because we need to know which direction we are going.
और ये सारी बातों उन्होंने बताई थी कि हमें अपने आप को जांचना है जिससे कि हम जान सके किस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं.
So if I'm not going in the right direction, I'm doing in the opposite direction, then there is something wrong with me.
और अगर जिस दिशा में सही दिशा में नहीं जा रहा हूँ, कहीं और जा रहा हूँ, तो कुछ गलत है.
Because there is a direction which we need to go, that is away from the sin and near to Jesus. That's the direction we are going.
और एक ऐसी दिशा है जो पाप से अलग रह के यीशु मसीह के नजदीक, वो दिशा में हमें आगे बढ़ना है.
So but if I see myself that instead of going to that direction, I am going to the opposite direction, that means I am falling in sin more than I was in falling last year, then there is something wrong with me.
और अगर मैं परमेश्वर की उस दिशा में जाने के बजाय पाप की ओर जा रहा हूँ, और मैं अगर मैं पाप में अधिक ज़्यादा गिर रहा हूँ, इसका मतलब पिछले साल की तुलना में कुछ मैं गलत है मेरे जीवन में.
So that is what I want to examine myself, that where I stand, whether there is a growth in me.
और मैं अपने आप को जांचना चाहता हूँ, और मैं कहाँ खड़ा हूँ, क्या मेरे जीवन में कुछ आगे मैं बढ़ पाया हूँ नहीं.
What God's working in me, I believe that God has helped me to grow in this year.
और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर ने मेरी सहायता की इस साल में बढ़ने के लिए.
And but the growth is not what God intends to be. I could have grown much more.
और जो मुझे जितना बढ़ना था, शायद परमेश्वर जितना चाहता था उतना शायद मैं नहीं बढ़ा हूँ.
But I trust God that in the coming year that I want to grow in the Lord more than I had grown in the last year.
और मैं परमेश्वर पर भरोसा रखता हूँ कि आने वाले साल में और प्रभु में बढ़ना चाहता हूँ जितना इस साल में शायद मैं नहीं बढ़ पाया.
And one thing which God encouraged me was to be thankful to Him for all the things He has done.
और परमेश्वर एक चीज मुझे स्मरण दिला रहा था कि हर बात जो परमेश्वर ने किया उसके लिए मैं धन्यवाद दूँ.
Not just what God has done, but what others have also done to me.
और न केवल परमेश्वर ने जो किया है उतना ही नहीं, लेकिन जो औरों ने किया उसके प्रति भी.
So that is one thing which I need to have more, that I need to be thankful to the small things which others have done to me.
और ये चीज मेरे जीवन में होना जरूरी है कि जो छोटी बातें लोगों ने मेरे जीवन में की उसके लिए मैं धन्यवाद दूं.
Sometimes I forget the good things which others have done to me.
और कई बार लोगों ने जो अच्छी बातें मेरे साथ की है उसमें भूल जाता हूं.
There are so many good things which I can think about.
बहुत सारी अच्छी बातें जिसको मैं सोच सकता हूँ.
So many good things to be thankful about.
और बहुत सारी ऐसी अच्छी बातें जिसके लिए मैं धन्यवाद दे सकता हूँ.
In Philippians chapter 4,
फिलिपी 4 अध्याय में हम पढ़ते हैं.
And verse 8 it says,
8 वचन.
Finally, brethren, whatever things are true, whatever things are honest, whatever things are just, whatever things are pure, whatever things are lovely, whatever things are of good report, if there is any virtue, if there is any praise, think on these things.
इसलिए भाई, जो बातें सत्य है, जो बातें आदरणीय है, जो बातें उचित, जो बातें पवित्र, बातें सुहावनी और मनभावनी है, जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें, उन पर ध्यान लगाया करो.
I was also meditating the same verse yesterday from Isaiah 43.
और यशायाह 43 उसी वचन को मैं मनन कर रही थी.
I didn't know that he is going to preach that.
और मुझे नहीं पता था कि आज वही वचन से प्रचार होगा.
This was 2 years back in 2015 December. God spoke to me very deeply.
2015 में परमेश्वर ने इस वचन से मुझे बात किया.
So that time it was in that verse, desert and wilderness. God spoke to me for my children.
और कई उस वचन में जो जंगल लिखा है, मरुभूमि लिखा है, उस बारे में मैं प्रभु ने मेरे बच्चों के बारे में बात किया.
But again, January 2016, when I read that verse.
और जनवरी 2016 के अंदर मैं और एक बार जब मैंने इस वचन को पढ़ा.
That time God spoke to me, you are thinking about your children, but I want to do a work in you.
और मैं प्रभु ने मुझे याद दिलाया कि तू अपने बच्चों के बारे में सोच रही है लेकिन मैं तेरे जीवन में कार्य करना चाहता हूँ.
सो दैट्स देन आई आस्क गॉड लॉर्ड यू डू अ वर्क इन मी.
तब मैंने परमेश्वर से मांगा प्रभु तू मेरे जीवन में कार्य कर.
That I like to read from from verse 16 onwards from New Living Translation. I am the Lord who opened a way through the waters and make a dry path through the sea.
यहोवा जो समुद्र में मार्ग और प्रचंड धारा में पथ बनाता है.
So God the one who opened a way before when the Israelites were coming through the sea, and I called for the mighty army of Egypt with all its chariots and horses. I drew them beneath the waves and they drowned their lives, snuffed out like a smoldering candle wick.
और जब इसराइलियों को परमेश्वर और समुद्र से बाहर निकाला, वहां लिखा है 17 वचन, जो रथ और घोड़ों और सूरवीरों समेत सेना को निकाल लाता, वे तो एक संग वहीं रह गए और फिर नहीं उठ सकते. वे बुझ गए, सन की बत्ती के समान बुझ गए. वो यूं कहता है.
But that verse 18 is saying.
18 वचन में.
But forget all that.
अब बीती हुई घटनाओं को स्मरण मत करो.
That is right. What happened? That is God done that work. That's such a great miracle God has done. But you forget all that.
ये बहुत अच्छी बात है कि परमेश्वर ने उस चमत्कार को किया, लेकिन उस बात को अभी भूल जाओ.
It is nothing compared to what I am going to do.
और जो आने वाले दिनों में जो करने हैं उसकी तुलना में वो कुछ भी नहीं है.
That's God wants to do a greater work, greater miracle than that in my life.
और उससे बढ़कर परमेश्वर और बड़े और महान चमत्कारों को मेरे जीवन में करना चाहता है.
That's what God is going to do in verse 19.
और वही काम परमेश्वर 19 वचन में प्रभु करने जा रहा है.
For I am about to do something new.
और मैं एक नई बात करने जा रहा हूँ.
See, I have already begun.
और वो मैंने अभी उसको शुरुआत कर दिया है.
He wants to do something greater miracle than that, parted the sea in my life.
और दो लाल समुद्र दो भाग के उससे भी बढ़कर महान चमत्कार प्रभु मेरे जीवन में करना चाहता है.
See, I have already begun.
और वो शुरुआत हो चुका है.
That's what we read in Philippians 1:6 that he has started a good work in me.
वही फिलिप्पी 1:6 में हमने पढ़ा कि एक भला कार्य उसने आरंभ कर दिया हमारे अंदर.
To making me like Jesus.
और मुझे यीशु मसीह के समान बनाना.
Do you not see it?
और क्या तुम उससे अनजान बने रहोगे?
I will make a pathway through the wilderness.
और मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा.
So this really that my life is like a wilderness.
और मेरा जीवन एक मरुभूमि और जंगल के समान है.
बट गॉड कैन मेक दैट विल्डरनेस लाइफ, ही कैन मेक ए पाथवे टू गॉड.
और परमेश्वर वहां पे मार्ग बनाकर परमेश्वर के लिए वहां एक मार्ग बनाना चाहता
है. दैट्स व्हाट गॉड स्पोक टू मी. ही कैन मेक माय लाइफ ए विल्डरनेस लाइफ इनटू ए पाथवे टू गॉड.
और मेरा जो जंगल के समान जो जीवन है परमेश्वर उसे परमेश्वर का मार्ग बनाना चाहता है.
एंड I will create rivers in the dry land.
उसने कहा कि निर्जल देश में नदियाँ बहाऊंगा.
That means my life is a waste dry land.
और मेरा जीवन है जो निर्जल है, जिसमें सूखा हुआ जीवन है.
But he can make create rivers of living waters from this land, the dry land.
लेकिन ये निर्जल देश में परमेश्वर जीवन के जलते जल, जीवन के बहते जल की नदियाँ बहा सकता है.
That is the great miracle God can do in my life.
और ये बहुत एक बड़ा चमत्कार है जो परमेश्वर मेरे जीवन में कर सकता है.
I was thinking that we all like a dry land. If God can do this work in every one of us, that flowing rivers or living water through our lives.
और मैं सोच रही थी इस बात में कि परमेश्वर ये जीवन ऐसा कार्य हम हर एक के जीवन में जहां निर्जल देश में नदियां बहाने का कार्य करे.
So then that greater work God can do through us.
तब परमेश्वर और भी महान काम हमारे जीवन के द्वारा कर पाएगा.
He can build his body of Christ.
लेकिन वो अपनी देह जो मसीह की देह उसे बनाना चाहता
है. That is God's desire.
परमेश्वर की इच्छा क्या है?
इच्छा that is what God desires.
और परमेश्वर यही इच्छा हमारे जीवन से रखता है.
Really in this end time to build a beautiful bride for his son.
और अंतिम दिनों इन अंतिम दिनों के अंदर उसके बेटे यीशु के लिए एक एक बेहतरीन एक सुंदर एक दुल्हन को वो बनाना चाहता है
दैट बाय बाय मेकिंग माय लाइफ थ्रू माय लाइफ फ्लोइंग थ्रू रिवर्स और लिविंग वाटर्स
और ताकि मेरे जीवन के द्वारा वो जीवन के जल की नदियां बहने पाए
आई बिलीव दैट गॉड कैन डू दिस वर्क इन अस
और मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर ये कार्य हमारे जीवन में कर सकता है
Another verse I like to read from 14 Isaiah 49
और 49 यशाया के अंदर 49 23
In the last sentence those who hopefully wait for me will not be put to shame
वहां लिखा है कि जो यहोवा की बाट जोते हैं वे कभी लज्जित न होंगे
If I am really hopefully wait for this happen in my life I will not be put to shame
और मेरे जीवन के अंदर मैं बहुत यहोवा आशा के साथ परमेश्वर की बाट जोती हूं तो मैं लज्जित नहीं होंगी
जैसे अबू अंकल ने शेयर किया कि प्रभु हमें कितना हमसे बात करना चाहता है कितना हमें ब्लेस करना चाहता है जितना हम चाहते हैं उससे ज़्यादा प्रभु हमें वो होप देना चाहते हैं और एक ऐसा ही एक प्रॉमिस ऑफ होप है यिर्मयाह चैप्टर 32-38 में बहुत बार हमारी लाइफ में हम बहुत सारी चीज़ें बहुत बार पाप में गिरते हैं क्योंकि हमारे अंदर वो परमेश्वर का भय नहीं होता बट इसमें एक बहुत ही सुंदर वचन परमेश्वर ने दिया है जैसे फिलिपियों में उसने लिखा है कि जो काम मैंने आरंभ किया मैं उसे ख़त्म करूंगा और मैं ही तुम्हारे हृदय में वो सामर दूंगा और वही इच्छा दूंगा और यहाँ पर परमेश्वर उस भय के बारे में उस वो फियर ऑफ गॉड के बारे में भी एक लॉर्ड ने प्रॉमिस दिया जो मुझे बहुत अच्छा लगता है वर्स 38 वे मेरी प्रजा ठहरेंगे और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा मैं उनको एक ही मन और एक ही चाल कर दूंगा कि वे सदा मेरा भय मानते रहें जिससे उनका और उनके बाद उनके वंश का भी भला हो मैं उनसे ये वाचा बांधूंगा कि मैं कभी उनका संग छोड़कर उनका भला करना ना छोड़ूंगा और अपना भय मैं उनके मन में ऐसा उपजाऊंगा कि वे कभी मुझसे अलग होना ना चाहेंगे मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ मुझे याद है कि एक बार मैं प्रभु से प्रार्थना कर रही थी कि परमेश्वर आप तो हमें कभी नहीं छोड़ेंगे बाइबल में लिखा दैट आई विल नेवर लीव यू नेवर फोरसेक यू पर क्या अगर मैं तुझे छोड़ दूं क्योंकि प्रभु कभी भी हमारे साथ ज़बरदस्ती नहीं करता बट ये बहुत ही सुंदर एक प्रॉमिस प्रभु ने दिया कि मैं अपना भय तुम्हारे हृदय में ऐसा उपजाऊंगा कि तुम मुझसे कभी अलग होना ना चाहोगे प्रभु हमारे हृदय में वो भय उपजाएगा कि हम उससे कभी अलग नहीं होना चाहेंगे और हम प्रभु के मार्गों में चलते रहेंगे तो ये भी एक बहुत ही सुंदर वायदा है जो हम आने वाले साल के लिए ले सकते हैं
मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ ये जो वचन जो मैंने आज यशाया 43 मेरे वचन मेरे बाइबल के अंदर डेट के साथ लिखा गया है और ये वचन मुझे तभी मिला था जब 2009 में मेरा पहला जॉब मेरे से मुझे निकाल दिया गया था जॉब से और तब मैं वापस आ रहा था सारे ड्रीम शैटर्ड हो गए थे बहुत ही निराश था रो रहा था कि प्रभु एक फैमिली के लिए एक जॉब की ज़रूरत थी और पहला जॉब हमारे फैमिली में अच्छा लगा था और ये वचन जब मुझे वहाँ पर मिला मैं जस्ट रो रहा था मेरे आंसू मेरे बाइबल के ऊपर गिर रहे थे बस में जब वापस आ रहा था निकाल दिया गया था अब क्या होगा नहीं समझ आ रहा था उसके बाद जब पिछले सालों को जब मैं देखता हूँ बार बार ऐसे समय आए जहाँ चीज़ें बहुत ही विपरीत थी हालात बहुत ही कठिन थे ऐसा लगता था कि प्रभु कैसे ये चीज़ें होंगी और बार बार जॉब से निकाला जाना ऐसे टफ बॉसेस मिलते थे 15-17 घंटे काम करना पड़ता था बहुत ही एक टफ टाइम था ये वचन बार बार मेरे मन में आता था और वहाँ ये लिखता था कि मैं एक नई बात नया काम करना चाहता हूँ और नया काम जब मैं देख पाता था वो नया काम था एक ब्रोकननेस का काम प्रभु करना चाहता था एक टूटा हुआ जीवन परमेश्वर चाहता था कि परमेश्वर तब तक कुछ कार्य नहीं कर पा जब तक वो तोड़ नहीं पा रहा था उन परिस्थिति उन हालातों को परमेश्वर ने मेरे जीवन में अनुमति दिया ताकि बार बार वो मुझे तोड़ सके और ये वचन के द्वारा था कि एक नया कार्य करूँ एक नया कार्य मुझे ये लगता था ये बहुत ही कठोर कार्य मुझे लगता था लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में एक नया कार्य था ताकि मेरे हृदय को मैं अपने आप को जांचूं कि मैं किन चीज़ों के पीछे भाग रहा हूँ कौन सी चीज़ें मेरे लिए महत्व की हैं ताकि वो जंगल को सच में परमेश्वर का निवास स्थान बना सके कई बार मैं अपने जीवन को नहीं देख पाता था कि प्रभु की आशीषों को ही मैं परमेश्वर की आशीष जो दिखती है उसके ऊपर मैं मान बैठता था लेकिन सच में परमेश्वर वो नया कार्य ब्रोकननेस के द्वारा मेरे जीवन के अंदर किया। जब मैं पिछले सालों को याद करता हूँ, बहुत उन कठिनाइयों के दौरान आंसुओं के द्वारा परमेश्वर लेकर जाते हैं, उन तराइयों के अंदर से लेकर जाते हैं जहाँ लगता है कि प्रभु अब ये नहीं हो पाएगा, आंसुओं के साथ बहुत ही टूटे हुए पन में से कि प्रभु क्यों बार बार उन हालातों में जीवन आता है। लेकिन फिर परमेश्वर के दिखाई एक नया कार्य, नयापन हमारे जीवन के अंदर एक नए खूबसूरती देना चाहता है। आत्मिक जीवन की खूबसूरती केवल उस टूटे हुए हालातों से ही आ पाता है जब हम परमेश्वर पर पूरी तरह से निर्भर हो जाते हैं। आशीषों के बाद भी प्रभु ये सिखाना चाहता है कि हमारी निर्भरता केवल परमेश्वर के ऊपर बनी रहे। और ये वचन सच में मेरे जीवन में बहुत ही प्रोत्साहन कि हर बार बीती हुई घटनाओं को स्मरण न कर, जो भी बातें हुई हैं वो मेरे आत्मिक सुंदरता के कारण, मुझे और आत्मिक सुंदर बनाने के लिए, मुझे और रिफाइन और शुद्ध करने के लिए, परमेश्वर के जैसा बनाने के लिए है। तो अनु हर परिस्थिति के लिए मैं धन्यवाद आज दे, जैसे वचन हमने सुना कि हर बात के लिए हम धन्यवाद दे सकते हैं क्योंकि हर बातें हमें इस नई बात करने के लिए परमेश्वर ने अनुमति दी है। धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद और स्तुति करता हूँ।
God is speaking to us.
और परमेश्वर हमसे बातें कर रहा है।
And God is telling in the spirit to us.
और परमेश्वर आत्मा में ये हमसे कहता है।
That you know, don't worry.
और चिंता मत कर।
Isaiah 58.
यशायाह 58 के द्वारा।
There it says in verse 12.
12 वचन में इस प्रकार लिखा है।
When you feel that things are broken down.
जब हमें लगता है कि सारी चीजें टूट चुकी हैं।
When you feel there is no hope.
और जब हमें लगता है कोई आशा नहीं है।
And when you are thinking that there is no direction.
और जहां हमें लगता है कोई दिशा नहीं है।
God is promising us.
और परमेश्वर वायदा देता है।
Which I take it to myself as a promise too.
और जो परमेश्वर की ओर से मैं वायदे के रूप में लेता हूँ।
And there it says he
shall. वहां कहता है।
There it says that he will rebuild it.
और वहां वो कहता है कि हमें और एक बार वो बनाएगा।
And God is really speaking to us and telling one thing.
और परमेश्वर से बातें कर रहा है एक चीज खास करके।
He says that I will do a new thing.
और वो कहता है मैं एक नई बात करूंगा।
Second he says that I will make the way for it.
और वो दूसरी कहता है कि मैं वो पथ को, उस मार्ग को बनाऊंगा।
Then he says that I will give you a new heart.
और उसके बाद कहता है कि मैं तुम्हें एक नया हृदय दूंगा।
I will give you my spirit.
मैं अपना आत्मा तुम्हें दूंगा।
And then he says with all this I will do I am already at work.
और इन सारी बातों के साथ वो कहता है कि मैं अब भी तुम्हें कार्य कर रहा हूँ।
And he's telling that I will reset things for you in a better way.
और वो कहना चाहता है कि मैं और एक बार सारी चीजों को सुधारूंगा आपके लिए, बेहतर होने के लिए।
And he says that I'll make you just stand.
और मैं आपको खड़ा करूंगा।
And he is going to water that to us.
और वो जो है उस बातों को पानी देगा, जल देगा।
And another thing, what when he says that when new things which shall spring out from us.
और दूसरी बात जो नई बातें जो हमारे भीतर से होगी वो ये है।
What I understand it like this.
और मैं इस प्रकार इसे समझता हूँ।
That you know normally the waters are not sweet.
और पानी जो हमेशा है वो मीठा नहीं होता है। और कई बार उसके अंदर नमक होता है, कई बार उसके अंदर कड़वापन होता है, या उसमें कोई पानी ठीक स्वाद नहीं होता है जिसमें।
Here God's verse is that it is going to be sweet.
और ये प्रभु का वायदा है, वचन है कि वो मीठा होगा।
That when people come to us, they will come to us. They will see that work in us.
और जब लोग हमारे पास आएंगे, वो परमेश्वर का कार्य वो देखने पाएंगे।
Yes, we are moving forward.
और हम आगे बढ़ते हैं इस प्रकार।
And God's promise is there for each and every one of us.
और ये परमेश्वर का वायदा हम सबों के लिए है।
That he is going to restore and set things well for us.
और ये हमारे लिए प्रभु सारी चीजों को ठीक करेगा, पुनर्स्थापित करेगा हमारे।
God is at work.
प्रभु कार्य कर रहा है।
In Jesus' name, amen.
यीशु के नाम से आमीन।